चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यथास्थिति में एकतरफा बदलाव करने के किसी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। मोदी सरकार के 8 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलवार को बोलते हुए एस जयशंकर ने सुरक्षा चुनौतियों को लेकर भारत के दृष्टिकोण पर कहा।
Our borders also need safeguarding, and we will never accept any attempt to unilaterally change the status quo. A posture that departs from established understandings will evoke its own responses. When it comes to security, we will do what it takes to ensure national well-being.
इन दिनों अरब और इस्लामिक देशों ने भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से की गई टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देशों में नाराजगी है। अरब देशों से पड़ रहे दबाव के बाद मोदी सरकार ने भारत की छवि को बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बयान को लेकर भाजपा के विरोधी दल भी उस पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा आए दिन उन्मादी बयानबाजी की निंदा करते हुए सीपीएम नेता सीताराम येचुरी कहते हैं।
When we raised these objections here, many of such people who raised the objections were mercilessly attacked, some of them arrested. But now, the government of India is apologizing for comments by the BJP spokesman. Till now, there is not one word from the Prime Minister in condemnation of this, and that gives encouragement and in a sense an official patronage for such forces to act. These are not fringe elements anymore. The government of India and the BJP are two different entities. For what the BJP did, the government of India apologizing doesn't arise. Why should the government be shamed? Why should we all be shamed? The BJP that has to bear the entire responsibility.
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह देश की जनता से माफी मांगे।
एक तरफ से हमारे देश को बदनाम करने का काम जिस तरह से बीजेपी ने किया है वो और उसके लिए खुद नरेंद्र मोदी जी ने इसकी माफी मांगना चाहिए, वो जो हिंदुस्तान की जनता की भी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने इनको देश संभालने के लिए भेजा था, लेकिन देश की बदनामी जिस तरह से आज दुनिया भर में हिंदुस्तान की हो रही है उसके लिए देश शर्मनाक हो चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता की माफी मांगना चाहिए कि जो हुई घटना, और बाद में वो स्टेटमेंट करते कि हम कोई धर्मवाद नहीं करते और उसका आज खुलासा भी मैंने पढ़ा। तो इस तरह की दोगली नीति जो है बीजेपी जो बार बार यूज करती है उसका हम निषेध करते हैं। हमारे संविधान ने जो पैरामीटर डिसाइड करके दिया है उस आधार पर सरकार चलना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। और कांग्रेस की तरफ से ये बार बार हम लोग कहते हैं, लेकिन धर्मांध व्यवस्था कर एक दूसरे धर्मों पे टीका करना, उनका विरोध करना जिस तरह से बीजेपी कर रही है उसके परिणाम देश भुगत रहा।
भाजपा भी अपने बड़बोले नेताओं से परेशान है और उसने नेताओं को सोच समझकर बोलने की हिदायत दी है। इस विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद पड़ा है। पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अलकायदा ने बदला लेने की बात कही है। एक पत्र जारी कर अलकायदा ने दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमलों की चेतावनी दी है। इस बीच नुपुर शर्मा और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर भारत का मुस्लिम समाज भी गुस्से में है। महाराष्ट्र में उनके बयान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और अब चर्चा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी बयानबाजी की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। ईडी की ताजा छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को कुछ नहीं मिला है।
अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए? केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत इज्जत दांव पे है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे।
वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सत्येंद्र जैन के बहाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा,
जो वेंडेटा वेंडेटा कहते हैं, यदि सच में वेंडेटा है तो कोर्ट से आज तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिली, आप अभी भी कोर्ट नहीं जा रहे रिलीफ लेने के लिए, और यदि आप इतने ही पाक है, इतने ही सत्यवान है, तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेकर उन्हें वापस भी लाया जा सकता है अगर उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, परंतु ये नहीं किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की जो आंच है वो सत्येंद्र जैन पर नहीं रुकती है। हमें सबको पता है कि इस पैसों से, इन शेल कंपनियों से 200 बीघा जमीन खरीदी गई थी, और हो सकता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उन स्टेक होल्डर्स के पास ये एजेंसियां पहुंच जाएगी इसका डर सता रहा है, और इसीलिए हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज तक इस्तीफा लेने में नाकाम है, असक्षम है, और लगातार भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। 9 जून तक वे ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। और अंत में एक नजर वर्ल्ड बैंक के आर्थिक विकास अनुमान पर डालते हैं, जो भारत के लिए कम कर दिया गया है। मंगलवार को जारी पूर्वानुमान में बढ़ती मुद्रास्फीति, सप्लाई चेन में गतिरोध और भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7.5% कर दिया गया है। अप्रैल में वर्ल्ड बैंक का यही अनुमान 8% तक था। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।